राष्ट्र, नेशन, जाति। यदि राष्ट्र नेशन का पर्याय है तो सबसे पहले इस नेशन की परिभाषा देखनी चाहिए। इस विषय का वैज्ञानिक विवेचन मार्क्सवादी पुस्तकों में मिलता है। उसकी चर्चा करने से पहले एक बात और कह दे कि अंग्रेजी में नेशन के समानांतर एक शब्द और है, नेशनैलिटी। इन दोनों में स्पष्ट भेद नहीं किया जाता। हिंदी में कुछ लोग इनके पर्यायवाची के रूप में राष्ट्र के अलावा राष्ट्रीयता शब्द का व्यवहार करते हैं। जहां अंग्रेजी में बहुवचन नेशनैलिटीज होगा, वहां हिंदी में राष्ट्रीयताएं लिखेंगे, यथा भारत में अनेक राष्ट्रीयताएं हैं। मार्क्सवादी साहित्य में नेशन शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है, उसके लिए हिंदी बंगला के परिचित पुराने शब्द जाति का प्रयोग करना अधिक उचित है। राष्ट्र शब्द से भूमि का भी बोध होता है, जबकि नेशन शब्द से केवल किसी भूखंड के निवासियों का बोध होता है। दोनों शब्दों जाति और राष्ट्र को अलग रखने से हम उस उलझन से बच सकते हैं जो नेशन शब्द के व्यवहार से उत्पन्न होती है। इस उलझन पर हम आगे विचार करेंगे। जाति के बारे में स्टालिन के की एक प्रसिद्ध परिभाषा है, जिसमें जाति के लक्षण पृष्ठ संख्या 15 बताए गए हैं। सामान्य आवास भूमि, सामान्य संस्कृति, सामान्य भाषा, सामान्य ऐतिहासिक परंपरा आदि के साथ मुख्य बात यह है कि जातियां आधुनिक पूंजीवादी विकास की देन है। पूंजीवादी के अभ्युदय से पहले जातियों की कल्पना नहीं की जा सकती। समाजवाद कायम होने के बाद सोवियत संघ एक बहुजातीय राष्ट्र बना। यह राष्ट्र स्वाधीन जातियों का स्वेच्छा से बनाया हुआ संघ है। राष्ट्रीयता की प्रेरक शक्ति समाजवादी अर्थतंत्र है। दूसरे महायुद्ध से पहले एक राष्ट्र के रूप में सोवियत संघ की चर्चा कम से कम सैद्धांतिक क्षेत्र में कम होती थी। दूसरे महायुद्ध के दौरान और उसके बाद राष्ट्र रूप में उसकी सत्ता की चर्चा काफी हुई। रूसी लोग अपने देश के संदर्भ में उस महायुद्ध को महान राष्ट्रीय संग्राम कहते हैं। राष्ट्र के लिए रूसी और अंग्रेजी में कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। लैटिन में एक शब्द है, पात्रिया। इससे अंग्रेजी के पेट्रियट, पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिक आदि शब्द बनते हैं। उसी से रूसी भाषा में पात्रियोटिचेस्की शब्द बनता है, जो अंग्रेजी के पेट्रियोटिक का प्रतिरूप है। सोवियत संघ एक राष्ट्र है, वहाँ रहने वाली जातियों की एक सामान्य मातृभूमि है। इस बारे में वहाँ के मार्क्सवादियों को कोई संदेह नहीं है। भले ही राष्ट्र जैसा शब्द उनकी भाषा में न हो, किंतु स्वेच्छित संघ बनाने की प्रेरणा यदि समाजवाद से मिलती है तो पोलैंड अलग राष्ट्र क्यों है? चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया अलग राष्ट्र क्यों है? स्पष्ट है समाजवादी प्रेरणा को समाजवादी देशों में स्वेच्छित संघ बनाने का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता। समाजवादी व्यवस्था में कई बहुत बड़े बहुजातीय राष्ट्रीय हैं, जैसे सोवियत संघ, कहीं छोटे बहुजातीय राष्ट्र हैं, जैसे युगोस्लाविया, कहीं द्विजातीय राष्ट्र है, जैसे चेकोस्लोवाकिया, कहीं एक जातीय राष्ट्र है, जैसे पोलैंड या रोमानिया। विभिन्न प्रकार के राष्ट्रों के बनने और विकसित होने का एक ही कारण अथवा मूल कारण समाजवाद होता तो यह विभिन्नता न दिखाई देती। इस विभिन्नता का कारण इन देशों में रहने वाली जातियों के इतिहास की भिन्नता है। यह ऐतिहासिक भिन्नता किस प्रकार की है? किन ऐतिहासिक कारणों से एक जातीय, द्विजातीय, बहुजातीय राष्ट्रों का निर्माण होता है? इसका विवेचन मार्क्सवादी साहित्य में नहीं है। जहाँ तक समाजवाद से भिन्न व्यवस्था वाले किसी बहुजातीय राष्ट्र का प्रश्न है, उसके बारे में मार्क्सवाद या तो कुछ नहीं बताता या यह कहता है कि ये सामंतों पूंजीपतियों के कायम किए हुए राज्य हैं, जिनमें एक शक्तिशाली जाति निर्बल जातियों का उत्पीड़न करती है। इसलिए आत्मनिर्णय का अधिकार देकर पीड़ित जातियों को अलग राज्य बनाने की छूट होनी चाहिए। यूरोप में एक देश है स्विट्जरलैंड, जहां जर्मन, फ्रांसीसी और इटालियन भाषाएं बोलने वाली 3 प्रमुख जातियां रहती हैं। 13वीं शताब्दी से ये जातियां इस देश में एक साथ रहती आई हैं। पृष्ठ संख्या 16। अपने स्वाधीनता की रक्षा के लिए इन्होंने अनेक युद्ध किए हैं। इस देश में जातियों को समान अधिकार प्राप्त थे, लेकिन लेलिन यूरोप के मार्क्सवादियों के सामने स्विट्जरलैंड का उदाहरण दिया करते थे। रूस में जातीय उत्पीड़न खत्म करने, जातीय समानता कायम करने के लिए वह रूसी भाषा के आधिपत्य का विरोध करते थे और कहते थे कि स्विट्जरलैंड में सभी भाषाओं के अधिकार समान हैं, वहां कोई अनिवार्य राजभाषा नहीं है। उसी तरह रूसी मार्क्सवादियों को अपने कार्यक्रम में अनिवार्य राजभाषा का विरोध शामिल करना चाहिए। प्रश्न है, स्विट्जरलैंड बहुजातीय राष्ट्र है या नहीं? वहाँ समाजवादी व्यवस्था नहीं है, पूंजीवादी व्यवस्था है, और ऐसी पुष्ट पूंजीवादी व्यवस्था है कि जिन राजनीतिज्ञों को शंका होती है कि शायद कभी अपना देश छोड़कर भागना पड़े, वे अपना रुपया पैसा इस देश के बैंकों में जमा कर देते हैं। स्विट्जरलैंड में कई जातियों ने मिलकर जो संघ बनाया, उसकी शुरुआत 13वीं सदी से हुई। पूंजीवादी विकास में सबसे आगे चलने वाले देश इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी के अंत में शुरू हुई। 18वीं सदी से पहले इंग्लैंड में औद्योगिक सर्वहारा वर्ग नहीं था। स्विट्जरलैंड में पूंजीवादी विकास इंग्लैंड के बाद हुआ, पहले नहीं। 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं सदियों में स्विट्जरलैंड राष्ट्र था या नहीं? मार्क्सवादी साहित्य में यह बात अक्सर कही गई है कि पूंजीवादी विकास का सामान्य नियम है एक जातीय राष्ट्र की स्थापना। इंग्लैंड पूंजीवादी देशों का अगुआ एक जाति एक भाषा वाले राज्य का मानव आदर्श रूप था। उसी तरह फ्रांस, जर्मनी, इटली एक भाषा एक जाति एक राज्य के विकास सिद्धांत को पुष्ट करते हुए प्रतीत हुए। मार्क्सवाद और जातीय समस्या नाम के अपने निबंध में स्टालिन ने पूंजीवादी विकास के 2 रूपों का उल्लेख किया। एक रूप था पश्चिमी यूरोप में, जहां एक जातीय राज्य कायम हुए। दूसरा रूप था पूर्वी यूरोप में, जहां बहुजातीय राज्य कायम हुए। इस भेद का कारण उन्होंने यह बताया कि जहां सामंतवाद को निर्मूल नहीं किया गया और पूंजीवाद का विकास अपेक्षाकृत कम हुआ, वहां ऐसे बहुजातीय राज्य कायम हुए। यहां पोलैंड का उदाहरण लेना चाहिए। इस देश में जब सामंती व्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी, तब भी पोलैंड के निवासी अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ते रहे। जब वहां पूंजीवादी विकास हुआ, तब वहां के पूंजीपति ही नहीं, मजदूर वर्ग का बहुसंख्यक भाग भी जारशाही रूस में रहने को तैयार न था। जब रूस में समाजवादी क्रांति हुई, तब भी पोलैंड समाजवादी रूस के साथ रहने को तैयार न हुआ। उज्जैन में जब सामंतवाद मजबूत था, तब वह रूसी राज्य में था। जब वहां समाजवादी क्रांति हुई, तब वह रूस के साथ सोवियत संघ में शामिल हुआ। इसलिए पूर्वी यूरोप में बहुजातीय राज्य बनने का जो कारण बताया गया है, वह अपर्याप्त है। पृष्ठ संख्या 17। पश्चिमी यूरोप में जिन राज्यों को एक जाति एक भाषा का नमूना माना जाता रहा है, क्या वास्तव में वे वैसे हैं? सबसे पहले इंग्लैंड। इस देश के सामंतों और पूंजीपतियों ने आयरलैंड पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था और दोनों को एक ही राज्य यूनाइटेड किंगडम में गिनते थे। स्टालिन ने ठीक लिखा है कि आयरलैंड की जाति ब्रिटिश जाति से भिन्न है, पर उन्होंने दोनों की भाषा अंग्रेजी मानी है, जो सही नहीं है। आयरलैंड को छोड़ दे तो देखना चाहिए कि ब्रिटेन नामक जो द्वीप बसता है, वह एक जातीय है या अनेक जातीय। भारत पर अंग्रेजों का राज था, उनका देश यहाँ के राजनीतिज्ञों के लिए राष्ट्रीयता का नमूना था, इसलिए इस देश की राष्ट्रीयता पर कुछ विस्तार से विचार करना आवश्यक है। इस देश में देश के कुल निवासी केल्ट थे। केल्ट शाखा की भाषाएं आयरलैंड के अलावा वेल्स और स्कॉटलैंड में अभी बोली जाती है। ब्रिटेन में अन्यत्र वे नष्ट कर दी गई। जिस समय रोमन लोगों ने ब्रिटेन पर अधिकार किया और उसे सभ्यता के नए तत्व दिए, उस समय अंग्रेज नाम के लोग उस देश में न रहते थे। जिस समय भारत में अशोक ने अपना राज्य स्थापित किया, उस समय ब्रिटेन में अंग्रेजों या उनके पूर्वजों का पता न था। जिस समय भारत में गुप्त साम्राज्य का प्रसार हुआ, उस समय जर्मनी के कुछ कबीले रोमनों द्वारा खाली किए हुए ब्रिटेन में घूमने का प्रयत्न कर रहे थे। इनमें दो कबीले मुख्य थे, एक एंगल दूसरा सैक्सन। इन्हें एंगल नामक लोगों के नाम पर ब्रिटेन के एक हिस्से को नया नाम इंग्लैंड दिया गया। स्कॉटलैंड और वेल्स अब तक इंग्लैंड से भिन्न प्रदेश माने जाते हैं। जब सामंती व्यवस्था का विकास न हुआ था, गढ़ व्यवस्था का युग था, तब जर्मन कबीलों ने ब्रिटेन के मूल निवासियों का विनाश करके या उनकी जन्मभूमि से उन्हें भगाकर इंग्लैंड नामक आवास भूमि में रहना शुरू किया। सामंती युग में फ्रांसीसियों की कृपा से उनके द्वारा पराजित और शासित इंग्लैंड में नई सामंती संस्कृति का जन्म हुआ। इसके बाद अंग्रेज सामंतों ने ब्रिटेन के केल्ट निवासियों से युद्ध करना आरंभ किया। 1158 में वेल्स से पहला युद्ध हुआ। 1163 में वेल्स से दूसरा युद्ध हुआ। 1276 में वेल्स से तीसरा लंबा युद्ध हुआ। 1284 में वेल्स को इंग्लैंड के राज्य में मिला लिया गया। 1294 में स्कॉटलैंड से युद्ध हुआ। 1314 में बैनकबर्न की प्रसिद्ध लड़ाई हुई, जिसमें रॉबर्ट ब्रूस की स्कॉट सेना ने अंग्रेजों को पराजित किया। 1356 में अंग्रेजों की फौज ने स्कॉटलैंड में खूब तबाही और बर्बादी की, किंतु उन्हें जीत न सकी। 1480 में स्कॉटलैंड से फिर युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने उस देश की भूमि का कुछ हिस्सा प्राप्त कर लिया। 1497 में अंग्रेजों ने स्कॉटलैंड से संधि की। 1542 में फिर युद्ध हुआ और स्कॉटलैंड का राजा पांचवा जेम्स पराजित हुआ। अब इंग्लैंड के राजा आठवें हेनरी ने प्रस्ताव किया कि उनके बेटे एडवर्ड से स्कॉटलैंड पृष्ठ संख्या 18 स्कॉटलैंड की अल्पवयस्क राजकुमारी मेरी का ब्याह कर दिया जाए। स्कॉटलैंड ने यह प्रस्ताव अस्वीकार किया। 1544 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने यह फैसला किया कि यदि इंग्लैंड के राजकुमार एडवर्ड के कोई संतान न हुई तो मेरी और एलिजाबेथ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की उत्तराधिकारी होंगी। 1564 में मेरी को अपने पुत्र छठे जेम्स के पक्ष में गद्दी छोड़कर भागना पड़ा और उसने इंग्लैंड में शरण ली। वहां उसे कैद कर लिया गया और 1587 में एक षड्यंत्र में शामिल होने के नाम पर इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने उसका वध करा दिया। 1603 में अंग्रेजों ने स्कॉटलैंड के राजा प्रथम जेम्स को अपना राजा बना लिया और इस तरह स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का संयुक्त राज्य बन गया। जेम्स के मरने के बाद प्रथम चार्ल्स राजा हुआ। 1648 में क्रॉमवेल ने स्कॉट सेना को पराजित किया। इस समय वेल्स में विद्रोह हुआ और क्रॉमवेल ने उसका भी दमन किया। 1649 में स्कॉट वंशीय प्रथम चार्ल्स का वध किया गया और इंग्लैंड को प्रजातंत्र घोषित किया गया। उधर उसके पुत्र द्वितीय चार्ल्स ने स्कॉटलैंड पहुंचकर स्वयं को राजा घोषित किया। 1650 में क्रॉमवेल ने स्कॉट सेना को पराजित किया। 1651 में द्वितीय चार्ल्स स्कॉट सेना लेकर इंग्लैंड में घुस आया, पर वह पराजित हुआ और फ्रांस में उसने शरण ली। क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद द्वितीय चार्ल्स इंग्लैंड का राजा बना। 1689 में विलियम और मेरी इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड के भी राजा रानी बने। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का संयुक्त राज्य कायम हुआ। जिसका नाम ग्रेट ब्रिटेन रखा गया। तभी से यूनियन जैक ब्रिटेन की राष्ट्रीय पताका बना। इस तरह 400 साल तक युद्ध करने के बाद और युद्धों में सफलता न मिलने पर विवाह आदि संबंधों के जरिए अंग्रेजों ने स्कॉटलैंड को अपने राज्य में मिलाया। ये सारी लड़ाइयाँ और कूटनीतिक चाले सामंती युग में संपन्न हुई। ऐसा नहीं था कि इंग्लैंड में पूंजीवादी विकास हुआ और इस विकास क्रम में पिछड़ा हुआ स्कॉटलैंड इंग्लैंड के पूंजीवादी क्षेत्र में सिमट आया। सामंतों ने स्कॉट लोगों का दमन किया, पूंजीपतियों ने उस स्थिति से लाभ उठाया। यही स्थिति वेल्स और आयरलैंड की थी। अंग्रेजों ने 12वीं सदी में आयरलैंड पर दांत गड़ाने शुरू किए थे। 13वीं सदी में उस देश की कुछ भाग में थोड़े से अंग्रेज जाकर बस गए और 15वीं शताब्दी के अंत तक आयरलैंड की स्वाधीनता समाप्त हो गई। यह सारा कार्य भी सामंती युग में संपन्न हुआ। अंग्रेज पूरे आयरलैंड में आयरिश जाति की जगह अंग्रेज जाति को प्रतिष्ठित न कर सके, जैसा कि उन्होंने ब्रिटेन के इंग्लैंड नामक भाग में किया था। किंतु नीति वही थी, कुछ भाग पर अंग्रेज बस गए, बाकी भाग पराधीन बना लिया गया। जैसे कि वेल्स और स्कॉटलैंड को पराधीन बनाया गया था, फिर अनेक बार विद्रोह हुए और उनका दमन क्रूरता पूर्वक किया गया। इनमें एक विद्रोह क्रॉमवेल के जमाने में हुआ, पृष्ठ संख्या 19 था, और प्रजातंत्रवादी अंग्रेजी सेना ने उसका भी दमन किया था। 1801 में आयरलैंड को कानून द्वारा यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। सामंती युग में बहुजातीय राज्य का निर्माण दो तरह से होता दिखाई देता है। एक तरीका स्विट्जरलैंड का है, जहां एक दूसरे को गुलाम बनाए बिना भिन्न भाषाएं बोलने वाली जातियां मिलकर एक साथ रहने लगी। दूसरा तरीका, उन्हें खदेड़ कर वहां अपना प्रभुत्व कायम किया और जिनका नाश न कर पाए या जिन्हें खदेड़ न पाए उन्हें। दूसरा तरीका इंग्लैंड का है, जहां अंग्रेजों ने मूल निवासियों का नाश करके उनकी भूमि से उन्हें खदेड़ कर वहां अपना प्रभुत्व कायम किया और जिनका नाश न कर पाए या जिन्हें खदेड़ न पाए उन्हें दंड भेद से किसी न किसी प्रकार अपने अंग्रेजों के अपने अधीन कर लिया। ऐसी परिस्थिति में आयरिश, वेल्स या स्कॉट जाति के लोग अंग्रेजों के राज्य को अपना राष्ट्र न समझ सकते थे। अंग्रेजों वाले भाग इंग्लैंड पर उनका कोई अधिकार न था, लेकिन उनके अपने जातीय क्षेत्रों पर अंग्रेज हावी थे। इसके विपरीत स्विट्जरलैंड के निवासी चाहे जर्मन बोले, चाहे फ्रेंच, चाहे इटालियन, वे सारे देश को अपना देश समझते थे। ऐसे ही देश को राष्ट्र की संज्ञा देना उचित है। यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन एक राज्य अवश्य रहा, पर यह सारा राज्य पराधीन जातियों के लिए उनका अपना सामंत राष्ट्र कभी नहीं था। पूंजीवादी विकास के साथ ब्रिटेन का विकास एक भाषा वाले राष्ट्र के रूप में हुआ। वहाँ की पुरानी जातियाँ वेल्स और स्कॉट अंग्रेजों के साथ मिलकर एक जाति का अंग बन गई। यह धारणा गलत है। मेरी पुस्तक भाषा और समाज 1961 में ब्रिटिश जाति के निर्माण का उल्लेख इसी प्रकार है। भारत के राजनीतिज्ञ भी ब्रिटेन को एक भाषा एक जाति वाला राष्ट्र इसी ढंग से मानते थे। पर इस संदर्भ में पहली बात ध्यान देने की यह है कि वेल्स, स्कॉट आदि केल्ट जातियों को जीत कर एक राष्ट्र बनाने का क्रम सामंती युग में पूरा हुआ। इस तथा कथित राष्ट्र का निर्माण किन्हीं नए आर्थिक सामंतों के विकास, आर्थिक संबंधों के विकास का परिणाम न था। दूसरी बात यह है कि ब्रिटेन में जब पूंजीवादी क्रांति हुई, जब पूंजीपतियों के सामंतों से राज्य सत्ता छीन कर अपने हाथ में ली, तब इस सामंत विरोधी क्रांति में उन्होंने सामंतों द्वारा गुलाम बनाई हुई जातियों को मुक्त नहीं किया। उनकी पराधीनता से बिकाऊ माल तैयार करने और बेचने में उन्होंने लाभ उठाया। पहले पूंजीवादी सशस्त्र क्रांति में ही क्रॉमवेल ने आयरिश, स्कॉट और वेल्स विद्रोहों का दमन करके सिद्ध कर दिया था कि सामंती राज्य विस्तार पूंजीपतियों के लिए लाभकारी है, वे जातियों का सामंत युगीन उत्पीड़न कायम रखेंगे। तीसरी बात यह है कि आयरिश जाति पर तंत्र हुई, मातृभूमि के एकीकरण के लिए वहां संघर्ष जारी है। साथ ही वेल्स और स्कॉटलैंड की जनता भी अब निरंतर स्वायत्त शासन की मांग कर रही है। वहां के कुछ राष्ट्रवादी दल ब्रिटेन से अलगाव की मांग भी कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 20। संभव है अलगाव की मांग पूरी न हो, पर स्वायत्तता की मांग को वेल्स और स्कॉटलैंड के बाहर भी ब्रिटेन के श्रमिक संघों और उनके नेताओं का व्यापक समर्थन मिल रहा है। यह समर्थन इस तथ्य की स्वीकृति है कि वेल्स और स्कॉट जातियां ब्रिटिश नामक जाति का अंग नहीं है, जातीय रूप में उनकी पृथक सत्ता है। भले ही राजनीतिक रूप में वे अंग्रेजों के साथ मिलकर एक ही संघ में रहना स्वीकार करें, सिद्ध हुआ कि ब्रिटेन एक भाषा, एक जाति वाला राष्ट्र नहीं है। जैसा लोग उसे समझते रहे हैं, वह बहुजातीय देश है। वहां अंग्रेजी के अलावा स्कॉटलैंड में गेलिक और वेल्स में वेल्स भाषाएं बोली जाती हैं। पूंजीवाद के अभ्युदय काल में उद्योग धंधों में मशीनों के चलन के समय ऐसा लगता था कि पश्चिमी यूरोप में सामान्य प्रवृत्ति यह है कि एक जाति एक भाषा वाले राज्य निर्मित हो रहे हैं। किंतु पश्चिमी यूरोप में कोई भी ऐसा पूंजीवादी राष्ट्र नहीं है जो वास्तव में बहुजातीय न हो। सामंतों द्वारा विजित और पीड़ित जातियों के ऊपर अपना सिकंजा और भी मजबूत करके नए पूंजीवादी ने यह भ्रम उत्पन्न किया कि जिस राज्य पर किसी एक जाति के पूंजीपतियों का प्रभुत्व है, उसमें एक ही भाषा बोली जाती है, अन्य भाषाओं और उन्हें बोलने वाली जातियों का अस्तित्व ही नहीं है। दूसरे महायुद्ध के बाद जैसे जैसे यूरोप के पूंजीपतियों के साम्राज्य संकुचित हुए या समाप्त हुए, वैसे वैसे अपने देश के मजदूरों में वे साम्राज्य की जो आमदनी बांटते थे वह कम हुई। मजदूरों को अपना शोषण अखरने लगा। बेकारी की संख्या मुद्रा स्फीति की तरह निरंतर बढ़ती गई। फलतः समाज में वर्ग संघर्ष तेज हुआ। इसके साथ एक दूसरी प्रक्रिया आरंभ हुई, जिन भाषाओं और जातियों का अस्तित्व लुप्त मान लिया गया था वे रंगमंच पर फिर आ गई। प्रभुत्वशाली जाति के पूंजीपतियों का सिकंजा ढीला होते ही उन्होंने अपनी स्वायत्तता या स्वतंत्रता की मांग करना शुरू कर दिया। स्पेन में फ्रेंको के अंतिम दिनों में और उसके मरने के बाद विशेष रूप से बास्क विद्रोह के समाचार निरंतर आ रहे हैं। बास्क भाषा स्पेनी भाषा से बिल्कुल भिन्न है। वेल्स और अंग्रेजी तो फिर भी इंडो यूरोपियन परिवार के अंतर्गत मानी जाती है, पर बास्क का अपना वंश ही निराला है। शताब्दियों से दबाए और सताए हुए बास्क जन अब अपनी स्वाधीन सत्ता के लिए फिर उठ खड़े हुए हैं। इनके साथ कतलन भाषा बोलने वाले भी स्पेन में अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर रहे हैं। स्पेन में कम से कम तीन भाषाएं बोलने वाली तीन जातियां रहती हैं। वह एक भाषा वाला राज्य नहीं है। बास्क भाषा बोलने वाले केवल स्पेन में नहीं है, उनका काफी बड़ा भाग फ्रांस में है। फ्रांस के बास्क अपनी स्वायत्तता के लिए उतने सक्रिय नहीं है जितने स्पेन के बास्क हैं, किंतु फ्रांसीसी भाषा से स्वतंत्र अपनी प्राचीन भाषा के प्रति पृष्ठ संख्या 11 वे भी अत्यंत सजग हैं। इनके अलावा फ्रांस में ब्रेतो भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, ये वहाँ के पुराने केल्ट समुदाय के आदिवासी हैं। इनकी भाषा वेल्स भाषा से मिलती जुलती है और फ्रांसीसी से उतना ही भिन्न है जितना अंग्रेजी से वेल्स भिन्न है। ब्रेतो लोग अपनी स्वायत्तता के बारे में उतना सक्रिय नहीं है जितना वेल्स भाषा बोलने वाले ब्रिटेन में है। पर इनकी भाषा का अस्तित्व बना हुआ है और यह नहीं कहा जा सकता कि वे फ्रांसीसी जाति में घुल मिल गए हैं। फ्रांस एक भाषा भाषी राज्य नहीं है, वहाँ कम से कम तीन भाषाएं बोलने वाली तीन जातियां रहती हैं। जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना बहुत प्रबल रही है, एक भाषा एक जाति के नारे के अलावा एक नेता एक पितृभूमि आदि का नारा भी वहाँ सुनाई देता रहा है। इस जर्मन राज्य के गठन में उस प्रदेश के भूस्वामियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, जिसे पूर्वी प्रूसिया कहा जाता है। यहाँ की भाषा न तो जर्मन थी और न जर्मन वंश की कोई शाखा प्रशाखा थी, वहाँ की भाषा स्लाव समुदाय की थी और उसमें लिखी हुई प्राचीन पुस्तकों में ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की बहुमूल्य सामग्री विद्यमान है। सामंती युग में जर्मनों ने इस भाग पर आधिपत्य जमा लिया था, वहाँ की जनता के जर्मनीकरण में उन्होंने कोई कसर न उठा रखी। नगरों में जर्मन भाषा का आग आम चलन हो गया, पर गांव में स्लाव वंशी भाषा का व्यवहार होता ही रहा। दूसरी महायुद्ध में पराजित होने के बाद जर्मनों को यह पुरातन स्लाव प्रदेश पड़ोसी स्लाव देश पोलैंड को देना पड़ा। महान जर्मन राष्ट्र एक भाषा वाला एक जातीय राष्ट्र नहीं था। जर्मन राज्य में स्लाव भाषा भाषियों के अस्तित्व का दिलचस्प जिक्र लेलिन के एक लेख में है। 1914 में जातियों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर उन्होंने एक लेख लिखा था। इसमें उन्होंने लुडविग बर्नहार्ड की एक जर्मन पुस्तक का हवाला दिया है, जिसमें प्रूसिया के राज्य में रहने वाले पोलिस समाज का विवरण दिया गया था। जर्मनी वासी पोल जनों ने अपनी जातीयता के लिए और पोलिस भूमि के लिए संघर्ष करते हुए एक तरह का किसान प्रजातंत्र कायम किया था। लेलिन कहते हैं कि जर्मन उत्पीड़न ने पोल जनों को संगठित होने के लिए बाध्य किया, वे जर्मनों से अलग संघबद्ध हुए। उस उत्पीड़न ने पहले अभिजात वर्ग में जातीयता जगाई, फिर पूंजीपतियों में और अंत में आम किसान जात वर्ग में जातीयता जगाई, फिर पूंजीपतियों में और अंत में आम किसान जनता में। खास तौर से 1873 के बाद अब जर्मन लोगों ने स्कूलों में पोलिश भाषा के व्यवहार के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। 19वीं सदी के अंतिम चरण तक जर्मन भूस्वामी और पूंजीपति इस प्रयत्न में लगे हुए थे कि पोल जाति का जर्मनीकरण हो जाए। पोल जाति की पृथक सत्ता का मुख्य चिन्ह उसकी भाषा थी, इसलिए 1873 में उन्होंने इस भाषा का दमन करने उसके स्थान पर जर्मन भाषा चलाने का प्रयत्न किया। पृष्ठ संख्या 22। इससे सिद्ध हुआ कि जर्मन राज्य एक जातीय राज्य नहीं था। लेलिन के उल्लेख में यह बात ध्यान देने की है कि जातीयता का भाव हमेशा पूंजीपतियों में पहले पैदा हो यह आवश्यक नहीं है। पोलिश जातीयता का भाव पहले अभिजात वर्ग में पैदा हुआ, उसके बाद पूंजीपतियों में, फिर वह किसान समुदाय में फैल गया। इसका कारण यह है कि पूंजीपतियों द्वारा घरेलू बाजार का निर्माण जातीय निर्माण के अनेक कारणों में एक कारण है, वह एकमात्र कारण नहीं है। पोल जन आधुनिक जाति के रूप में संगठित न होने पर भी भाषा संस्कृति और ऐतिहासिक परंपराओं की समानता के कारण लघु जातियों के रूप में भी जर्मनों से भिन्न अपनी आधारभूत एकता पहचानते थे। इसीलिए अभिजात वर्ग में भी जातीय चेतना जागृत हुई। पूंजीपतियों का अस्तित्व तब रहा हो चाहे न रहा हो। दूसरे महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका संसार के सबसे शक्तिशाली पूंजीवादी राज्य के रूप में विकसित हुआ। यहाँ के जिन काले आदमियों की भाषा अब केवल अंग्रेजी है उनकी बात छोड़ दीजिए, वहाँ आयरलैंड और यूरोप के देशों से आने वाले जो गोरे लोग अंग्रेजी को ही सांस्कृतिक भाषा के रूप में लिखते बोलते हैं उनकी बात भी छोड़िए। इन सबको अंग्रेजी भाषी अमेरिकी जाति का अंग माना मान लीजिए, पर वहाँ के रेड इंडियन कहलाने वाले आदिवासी मूल भूमि छीन जाने पर भी नष्ट नहीं हुए, उनकी भाषाएं जीवित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एकाध राज्य में कानूनी तौर पर उनकी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम भी मान लिया गया है। अमेरिका में रेड इंडियन जातियों और उनकी भाषाओं के अस्तित्व से इनकार करना असंभव है। अमेरिकी राष्ट्र पर इन आदिवासी जातियों का कोई हक है या नहीं, उनका हक माना जाए चाहे न माना जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक ही भाषा बोलने वाली एक ही जाति के लोग रहते हैं, यह कोई नहीं कह सकता। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन आदि की तरह संयुक्त राज्य अमेरिका भी बहुजातीय राज्य है। यूरोप और अमेरिका के राज्यों को ध्यान पूर्वक देखा जाए तो विदित होगा कि एक जातीय राज्य अपवाद है, नियम है बहुजातीय राज्य। कहीं इन राज्यों में बहुत प्रभुत्वशाली जाति से भिन्न दूसरों की जातीयता मुखर है, कहीं वह ऊपर से शांत दिखाई देती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर कनाडा राज्य है, यहाँ दो भाषाएं बोली जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के आदिवासियों के लिए सारा देश उनका राष्ट्र चाहे न हो, कनाडा के अंग्रेजी फ्रांसीसी बोलने वालों के लिए सारा देश एक ही राष्ट्र है। इसी तरह यूरोप के छोटे से देश बेल्जियम में एक जाति फ्लेमिश भाषा बोलती है जो जर्मन समुदाय की है, दूसरी जाति फ्रांसीसी भाषा बोलती है। इन दोनों के लिए एक ही राष्ट्र है। बेल्जियम और दो महायुद्धों में इस देश की जातियों ने अपनी राष्ट्रीय एकता अच्छी तरह प्रमाणित कर दी है। पृष्ठ संख्या 23। परिणाम यह निकलता है कि जिन देशों में सामंती और पूंजीवादी युगों में जातीय उत्पीड़न नहीं रहा या कम रहा है, विभिन्न जातियों में समानता और भाईचारे का व्यवहार जहां अधिक हुआ है, वहां भाषाओं की भिन्नता होते हुए भी राष्ट्रीयता का विकास हुआ है। इसके विपरीत जहां एक प्रभुत्वशाली जाति के सामंतों और पूंजीपतियों ने दूसरी जातियों का दमन किया है, वहाँ इस राष्ट्रीयता का अभाव रहा है। प्रभुत्वशाली जाति भले ही राष्ट्रीयता के गीत गाती रहे, पराधीन जातियों में इस राष्ट्रीय चेतना का अभाव होता है। उनके लिए राष्ट्रीयता का अर्थ होता है दूसरों का प्रभुत्व स्वीकार करना, अपना जातीय अस्तित्व अस्वीकार करना। मारियो पेई ने लैंग्वेज फॉर एवरी बॉडी पुस्तक में बेल्जियम और स्विट्जरलैंड का हवाला देते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। यह देखना दिलचस्प है कि बेल्जियम और स्विट्जरलैंड दोनों में फ्रांसीसी भाषा बोलने वालों के बड़े समुदाय हैं। इनकी भाषाई नातेदारी फ्रांस से है, न कि फ्लेमिश या जर्मन बोलने वाले जर्मेनिक समुदाय से। दोनों देशों में जर्मन कुल की भाषाएं बोलने वालों का दूसरा बड़ा समुदाय है। भाषा और संस्कृत के विचार से फ्रेंच भाषी बेल्जियम और स्विस दोनों फ्रेंच हैं, किंतु यह बात उनकी बेल्जियम और स्विस राजनीतिक वफादारी में बाधक नहीं होती। उनके राष्ट्रों से उन्हें अलग करने और फ्रांस के राजतंत्र से संबद्ध करने के प्रयास निश्चय ही व्यर्थ होंगे। ठीक यही बात स्विट्जरलैंड के उन लोगों के बारे में कही जा सकती है जो इटालियन और जर्मन भाषाएं बोलते हैं। पृष्ठ 200-201। यह राजनीतिक वफादारी क्या है जिसके कारण बेल्जियम और स्विट्जरलैंड के फ्रांसीसी भाषी लोग फ्रांस से संबद्ध होना स्वीकार नहीं करते? क्या यह केवल राजनीतिक वफादारी की बात है? शताब्दियों से भिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग स्विट्जरलैंड में एक साथ रहते आए हैं, उनका मिला जुला इतिहास है, सामान्य आर्थिक जीवन है और भिन्न भाषाओं में रचे हुए साहित्य के साथ साथ उनकी संस्कृति में बहुत से तत्व सामान्य हैं। उनके लिए स्विट्जरलैंड एक राष्ट्र है और इस राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा है जो राजनीतिक वफादारी से बड़ी चीज है। इससे मिलती जुलती बात बेल्जियम के बारे में कही जा सकती है। इसके विपरीत यूरोप के एक दूसरे राज्य का हाथ हाल देखिए, जहां अनेक जातियां रहती थी किंतु जिनमें राष्ट्रीय एकता का विकास न हुआ था। पुराने ऑस्ट्रिया हंगरी राज्य में इटालियन कोट, सर्ब, पोल, चेक, स्लोवाक, रोमानियन और हंगेरियन जातियों के लोग रहते थे। राज्य सत्ता जर्मन भाषियों के हाथ में थी। इस देश की गैर जर्मन भाषी जातियां इस राज्य के बाहर अपने मूल देशों के प्रति निष्ठावान थी। हंगेरियन लोगों का इस राज्य के बाहर कोई देश न था। वे स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग करते थे। जोर जबरदस्ती से कायम किया हुआ यह राज्य टूट गया। हंगरी अब एक स्वतंत्र राष्ट्र है। पृष्ठ संख्या 24। ब्रिटेन में जब गृह युद्ध हुआ तब अंग्रेजों के सताए हुए आयरिश, वेल्श और स्कॉट लोगों ने विद्रोह किया और उनके विद्रोहों का दमन किया गया। यह गृह युद्ध पूंजीवादी क्रांति था जिसमें व्यापारी वर्ग सामंतों से राज्य सत्ता छीन रहा था। इससे तुलना कीजिए फ्रांसीसी राज्य क्रांति की, जहां क्रांति के समय गैर फ्रांसीसी लोगों को अपनी अपनी भाषाओं का व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। मारियो पेई ने उक्त पुस्तक में बताया है कि क्रांति के प्रारंभिक दौर में फ्रांस के जिन प्रदेशों में जर्मन, इटालियन, कतलन, बास्क और ब्रेतो भाषाएं बोली जाती थी, उनमें लोगों को अपनी भाषाओं का व्यवहार करने के लिए इस विचार से उत्साहित किया गया कि इस तरह क्रांतिकारी आंदोलन आसानी से फैलेगा और क्रांति का अंतरजातीय स्वरूप निर्मित होगा। यह भी एक पूंजीवादी क्रांति थी। गैर फ्रांसीसियों को दबाने के बदले उन्हें अपनी भाषाओं का व्यवहार करने की प्रेरणा दी गई। किंतु क्रांति के सफल हो जाने के बाद फ्रांसीसी पूंजीपतियों ने अपना प्रभुत्व सुदृढ़ किया और फ्रांस में एक ही भाषा का चलन हो, इसके लिए प्रयत्न किया। मारियो पेई कहते हैं कि यह भावना फ्रांस में अब भी बलवती है। फ्रांसीसी भाषा का व्यवहार न करने वाले लोग फ्रांसीसियों के कोप भाजन इस हद तक बनते हैं कि यदि चिट्ठी ब्रेतो अथवा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा में लिखी गई हो तो वह प्रेषक के पास वापस भेज दी जाती है और अमेरिकी राष्ट्र में गैर अंग्रेजी भाषाओं की स्थिति कैसी है। मारियो पेई ने बताया है कि फ्रांस से मिलते जुलती हालत यहाँ भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्रेंच, जर्मन, स्वीडिश और डच भाषाओं का व्यवहार करने वालों को निरुत्साहित किया गया और नवागंतुकों को समझा दिया गया कि अंग्रेजी का व्यवहार करने से ही नागरिकता प्राप्त होगी और उस नागरिकता के फल प्राप्त होंगे। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि पूंजीवादी राज्यों में उन जातियों को दबाया गया है जो सत्ताधारी सामंतों और पूंजीपतियों की भाषा अस्वीकार करती थी। इस तरह के राज्य भारत के लिए आदर्श राष्ट्र नहीं हो सकते। यह धारणा मन से निकाल देनी चाहिए कि राष्ट्र का लक्षण यह है कि उसमें एक ही भाषा का व्यवहार हो। मुख्य बात यह है कि किसी देश में रहने वाली जातियां आपस में एक दूसरे से किस तरह का व्यवहार करती हैं। एक साथ रहने के कारण उनकी कोई सामान्य ऐतिहासिक परंपराएं निर्मित हुई हैं या नहीं। भारत की राष्ट्रीयता की समस्या के विवेचन के लिए यूरोप के किसी देश का उदाहरण सामने रखना ही है तो स्विट्जरलैंड का उदाहरण रखना चाहिए। पहले तो ब्रिटेन ऐसा देश नहीं है जिसमें एक ही भाषा बोलने वाली जातियां रहती हों। फिर यदि यह मान लिया जाए कि वहां सब लोगों की भाषा अंग्रेजी ही है तो इसे कौन अस्वीकार करेगा। पृष्ठ संख्या 25 कि वेल्स और गेलिक भिन्न शाखा की भाषाएं हैं और उनका दमन किया गया है। भाषाओं का दमन करने वाला राज्य भारत के लिए आदर्श राष्ट्र कैसे हो सकता है।